नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 4 दिन के दौरे पर भारत आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विशेष दूत एंड्रियाज काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि तेलंगाना अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना के लिए प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान को 25-23, 21-16 से हरा कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन हार कर बाहर हो गए हैं। उन्हें इंडोनेशिया के अल्बी फरहान ने सीधे गेमों में 21-19, 21-16 से हराया। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रॉयलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।